नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र को पूरी तरह बंद करने की घोषणा की। तालिबान ने कहा अफगानी सेना अपनी संप्रभुता के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत श्रीलंका की सहायता बढ़ाई। चक्रवाती तूफान दित्वा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले से यूक्रेन की राजधानी कीव में 3 लोगों की मौत और 29 घायल। और बैडमिंटन में सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत और डबल्स में गायत्री गोपीचंद तथा त्रिशा जॉली की जोड़ी सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनके देश द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ाए जाने के कारण वहां के आसपास और उसके ऊपर के हवाई क्षेत्र को पूरी तरह बंद माना जाना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने यह संदेश दिया है। वहीं वेनेजुएला के अधिकारियों ने कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी। अमेरिका के रक्षा विभाग ने भी कोई टिप्पणी नहीं की। बढ़ती सैन्य उपस्थिति के समर्थन के साथ इस कैरेबियाई देश में अमेरिकी मादक पदार्थ निरोधक अभियान कई महीनों से बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने इस सप्ताह सैन्य अधिकारियों को बताया कि संदिग्ध वेनेजुएला तस्करों को निशाना बनाकर जमीनी कार्रवाई जल्द ही शुरू की जा सकती है। अमेरिकी विमानन नियामक ने हाल ही में विमानन कंपनियों को बढ़ते सुरक्षा जोखिमों के बारे में चेतावनी दी थी। इस कारण वेनेजुएला ने कई उड़ानों के परिचालन अधिकार रद्द कर दिए गए। तालिबान ने सीमा पर तनाव बढ़ने पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसकी सेनाएं अफगानिस्तान की सीमा में किसी भी उल्लंघन का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये घोषणा सैकड़ों नवस्नातक कमांडो इकाइयों के एक समारोह के दौरान की गई। उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरदार सहित वरिष्ठ तालिबान अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री अब्दुल गनी ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा और आक्रमण के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार है। इस सप्ताह की शुरुआत में तालिबान शासन ने अफगानिस्तान के पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की थी। चक्रवाती तूफान दित्वा से जूझ रहे श्रीलंका की आपदा कार्रवाई में भारत का सहयोग और बढ़ गया है। भारतीय नौसेना के 2 हेलीकॉप्टरों ने पन्नाला में गंभीर बाढ़ में फंसे 8 लोगों को बचाया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत भारत ने 27 टन राहत सामग्री भेजी है।
चक्रवात डिटवा के चलते श्रीलंका में राहत कार्यों को भारत की मदद से और मजबूती मिली है। भारत से आए अनुभवी एनडीआरएफ कर्मियों और भारतीय हेलीकॉप्टरों ने लोगों की जान बचाने के प्रयासों को और तेज किया है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने राहत सामग्री से भरे 2 विमान भेजे हैं जो श्रीलंका के बचाव कार्यों में बड़ी सहायता देंगे। श्रीलंकाई प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने में पूरा सहयोग करने की अपील की है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
इस समय 4 भारतीय हेलीकॉप्टर श्रीलंका में हैं। इस अभियान में भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रांत से संचालित होने वाले 2 विमान भी शामिल हैं। भारत के विमान श्रीलंका वायुसेना, नौसेना, सेना, पुलिस और स्थानीय प्रथम प्रतिकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चक्रवात दित्वा से श्रीलंका के अधिकतर हिस्सों में तबाही मची हुई है। चक्रवात में अब तक 123 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 130 लापता है। इस बीच चक्रवाती तूफान दित्वा तमिलनाडु के तटीय भागों की ओर बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तूफान के कारण चेन्नई हवाई अड्डे से कल 36 घरेलू और 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द रहेंगी।
मौसम विभाग के अनुसार तूफान का केंद्र आज आधी रात तक तमिलनाडु तट से 60 किलोमीटर, तड़के तक 50 किलोमीटर और कल शाम तक 25 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में केंद्रित रहेगा। नागपट्टिनम, कडलूर और डेल्टा क्षेत्रों सहित 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तंजावुर में 2,00,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि लगातार बारिश के कारण प्रभावित हुई है। ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार काराईकाल जलमग्न दिखाई दे रहा है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ वैष्णवी।
दक्षिण पूर्व एशिया में बाढ़ और भूस्खलन से मृतकों की संख्या 350 से अधिक हो गई है। इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में खोज और बचाव अभियान तेज हो गए हैं। लगातार वर्षा ने तीनों देशों के बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। हजारों लोग फंसे हुए हैं।
इंडोनेशिया में आचे, उत्तरी सुमात्रा और पश्चिमी सुमात्रा में सुनामी, भूकंप और बाढ़ से मृतकों की संख्या 248 हो गई है। 100 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। राहत कर्मियों को आपदा से प्रभावित कई इलाकों में पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सड़कें नष्ट हो जाने तथा संचार आपूर्ति बाधित होने से प्रभावित क्षेत्रों का संपर्क कट गया है। राहत विमान उत्तरी सुमात्रा प्रांत के केंद्रीय तपानुली जिले में राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। नष्ट हो चुके पुलों और भारी उपकरणों की कमी के कारण राहत उपायों में बाधा आ रही है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि पिछले हफ्ते से जारी मानसूनी वर्षा से उत्तरी सुमात्रा प्रांत में नदियों के तटबंध टूट गए हैं। बाढ़ के कारण हजारों घर और भवन पानी में डूबे हुए हैं। बृहस्पतिवार को आचे प्रांत में 6.3 तीव्रता का भूकंप भी आया। उधर थाईलैंड में मृतकों की संख्या बढ़कर 162 हो गई है। सोंगखला प्रांत में जल स्तर 3 मीटर तक पहुंच गया है, जिससे देश में एक दशक में सबसे भीषण बाढ़ आई है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं अर्जुन शर्मा।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन के राजधानी शहर कीव में कल रात रूस द्वारा किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 29 घायल हुए हैं। इस हमले से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि कल रात हुए हमले में कीव की बिजली सुविधाओं और यूक्रेन के 5 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। 5,00,000 से अधिक लोगों को राजधानी कीव में बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। ड्रोन का मलबा गिरने से रूस के दक्षिणी क्रास्नोडार में आ फ्लिप्स की तेल परिशोधन में आग लग गई। रूसी अधिकारियों ने बताया कि आ फ्लिप्स की तेल परिशोधन में लगी आग को अब बुझा दिया गया है। एक स्थानीय कार्यबल ने खबर दी है कि कुछ तकनीकी उपकरणों को नुकसान हुआ है, लेकिन किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हवाई रक्षा इकाइयों ने कल रात रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में 11 ड्रोन सहित अन्य क्षेत्रों में यूक्रेन के 103 ड्रोन को नष्ट किया है। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह।
ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीनी सेना के 12 विमानों ने आज ताइवान जल डमरू मध्य की सीमा रेखा को पार किया। ये विमान इस द्वीप के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हवाई रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश कर गए। इससे पहले ताइवान ने द्वीप के आसपास 26 PLA के विमान और चीनी नौसेना के 8 जहाजों के व्यापक स्तर पर संचालित होने का पता लगाया। इनमें से 23 विमानों ने अनौपचारिक और सैद्धांतिक सीमा रेखा को भी पार किया। ताइवान के अधिकारियों ने कहा है कि चीन द्वारा द्वीप के आसपास दबाव बढ़ाए जाने के कारण ताइवान सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा सुधारों को तेज कर रहा है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत तथा गायत्री गोपीचंद और ट्रिशा जॉली की जोड़ी आज लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई। पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत ने मिथुन मंजुनाथ को हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और ट्रिशा जॉली की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया की ओंग शिनही और कार्मेन टिंग को हराया। फाइनल में इस जोड़ी का सामना कल जापान की काहो ओसावा और माई तानाबे से होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला कल से शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मुकाबला रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 1:30 PM से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र को पूरी तरह बंद करने की घोषणा की। तालिबान ने कहा अफगानी सेना अपनी संप्रभुता के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत श्रीलंका की सहायता बढ़ाई। चक्रवाती तूफान दित्वा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। और बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत तथा गोपीचंद और ट्रिशा जॉली की जोड़ी सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।